नमस्कार, मैं रविश कुमार। कृषि कानून वापस हुआ है, कानून के बनने की सोच वापस नहीं हुई है। आज भी सरकार ने कृषि कानूनों की वापसी के लिए जो बिल पेश किया, उसकी प्रस्तावना में कानूनों की तारीफ ही की है। प्रस्तावना के पैराग्राफ 3 और 4 में 26 पंक्तियों में तीनों कानूनों के फायदे बताए गए हैं और पैराग्राफ 5 और 6 में वापसी पर 14 पंक्तियां हैं। इससे यह साफ हो जाना चाहिए कि केवल कानून वापस हुआ है, कानून के पीछे की सोच नहीं। तो क्या किसानों को मान लेना चाहिए कि जो कानून वापस हुए हैं वो अब कभी दोबारा नहीं लौटेंगे, या फिर से इनकी वापसी का दरवाजा अब भी खुला है?
बहुत बड़ा दिन है, लेकिन लड़ाई आधी है। जोश भर दिया है, लड़ने का जोश भर दिया है। अब और लड़ेंगे, हिम्मत से लड़ेंगे, पूरे देश को MSP दिलाएंगे।
लेकिन आज का दिन ऐतिहासिक है आपके लिए।
ऐतिहासिक दिन है, पहली शुरुआत है, झुकाया है सरकार को, झुकाया है।
ये साड़ी मेहनत का नतीजा है, अभी किलो किलो दिहाड़ी च मिट्टी खाधी आ रहे।
कानून वापसी पर खुशी का इजहार और भांगड़ा करते इन किसानों को अगर अपनी जीत दिख रही है तो सरकार इसे अपनी हार के रूप में नहीं दिखाना चाहती। भांगड़ा करते हुए इन किसानों को अगर लगता है कि देश के किसानों की जीत हुई है तो सरकार साफ करना चाहती है कि ये कुछ किसान हैं। बिल की प्रस्तावना में भी लिखा है कि कुछ किसानों को बिल के फायदे नहीं समझा पाई। इन विधियों के विरुद्ध केवल किसानों का एक समूह ही विरोध कर रहा है। सरकार ने कृषि विधियों के महत्व पर किसानों को समझाने और विभिन्न बैठकों और अन्य मंचों के माध्यम से कृषि विधियों के गुणों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जैसे कि हम देश की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस समय प्रत्येक को समाविष्ट वृद्धि और विकास के पथ पर एक साथ ले चलने की आवश्यकता है। तो आजादी के अमृत महोत्सव में सबको साथ लेकर चलने के लिए सरकार ने कुछ किसानों के विरोध के कारण 3-3 कानून वापस ले लिए। 12 मार्च 2021 से आजादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ है, उस समय भी बजट सत्र चल रहा था। 25 मार्च को बजट सत्र समाप्त हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव के बीच मॉनसून सत्र आकर चला गया, मगर अमृत महोत्सव के कारण कानूनों की वापसी नहीं हुई। शीतकालीन सत्र में अमृत महोत्सव का ध्यान आया है।
अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और
इंट्रोड्यूस हो रहा है
करार विधेयक 2020,
अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है,
और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन, और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधायक को पुरस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।
प्रश्न है कि विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में।
अच्छा, देखिए ये जो फॉर्म बिल लाए जा रहे हैं इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा? सर, ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया।
सर,
लेकिन उस समय चर्चा हुई थी।
मैं चर्चा कराने को तैयार हूँ, आप माहौल को ठीक कीजिए। मैं मना कर रहा हूँ कि चर्चा करने को, आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा, लेकिन बेल में आने के बाद चर्चा नहीं होती कभी विधेयक पर। आप विधेयक वापस करने की मांग कर रहे थे ना, मैं चर्चा करा दूंगा विधेयक वापस पर, पूर्ण चर्चा कराऊंगा। आप जाइए सीट पे। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ।
हम चाहते थे कि चर्चा हो जाए, बहस करने का जगह है पार्लियामेंट। बताइए आपके कारण क्या क्या थे ये सब करने के लिए, और ये आपकी गलती मानने के लिए, और हम सुनेंगे, हम भी हमारी तरफ से बोलेंगे। कॉम्पेंसेशन की बात है, MSP की बात है, 3-4 चीजें किसान को न्याय मिलना चाहिए, ये हम चाहते थे। तो ये सब बताने के लिए हम मौका चाहते थे पार्लियामेंट की डिस्कशन में। पार्लियामेंट को बिना कोई डिस्कशन से बिल पास करना ये भी उचित नहीं है ना।
मेन मुद्दा है किसानों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे आज तक लिखित गारंटी ये सरकार नहीं दिया है। इसीलिए प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद भी ये तो कभी हुआ ही नहीं है देश के हिस्ट्री में, एक प्रधानमंत्री टेलीवाइज एड्रेस में कह दे कि हम वापस ले रहे और तब भी लोग वापस घर नहीं जा रहे। अभी भी वो बोले कि हमको तो ये पूरा चर्चा होना चाहिए और अपोजिशन को जो अपने बात रखना है वो अलाउ कीजिए।
अपोजिशन को बोलने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है, क्या बोलेंगे इसको लेकर? बोले
तो इसमें क्या बोले आप? अगर अपोजिशन को सांसद के अंदर बोलना जो हमारा काम है वो अगर हमको करने देते तो हम गांधी मूर्ति के आके आपके पास बात करने की जरूरत नहीं होती।
लोकसभा में लगा कि हंगामे के कारण कृषि कानूनों की वापसी पर चर्चा नहीं हो सकी, लेकिन राज्यसभा में कृषि मंत्री ने साफ साफ कह दिया कृषि कानूनों की वापसी पर चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। तो बात हंगामे की नहीं, सरकार के इरादे की थी। सरकार ने बिल की प्रस्तावना में कानून और अन्य योजनाओं की तारीफ कर दी। कृषि मंत्री ने अपने बयान में विपक्ष पर हमला कर दिया, लेकिन सदन में इन कानूनों की वापसी पर चर्चा कराने से इनकार कर दिया।
तीनों कृषि सुधार बिल
आपकी बात रिकॉर्ड
की जाए किसानों की भलाई के लिए लाई थी, लेकिन हम सब लोगों को इस बात का दुख है कि कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी और जो कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में रखने के बाद भी उस पर दोहरा रुख अपनाते रहे। हम
आपकी बात ही रिकॉर्ड की जा रही है,
इसको
बहुत संक्षेप में माननीय मंत्री जी रखे,
इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर उन्होंने इनको वापस लेने की घोषणा की। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है, इसलिए इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ विधेयक को पारित किया जाए।
कानून की वापसी भी कथनी और करनी की एक रूपता है, क्या कमाल है। प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक बड़प्पन है, तारीफ प्रधानमंत्री की कर रहे हैं। किसानों की मांग की तारीफ नहीं हुई, उनके आंदोलन की तारीफ का बड़प्पन नहीं दिखाया गया, उन्हें गले लगाने का बड़प्पन नहीं दिखाया गया। सरकार ने उन्हें कुछ किसान कहने की बड़प्पन का मोह नहीं छोड़ा। पिछले साल 17 सितंबर को लोकसभा में इस बिल पर बहस हुई और उसी दिन इसे पास कर दिया गया। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन होता है। बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल इन कानूनों के पास होने पर प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कृषक सशक्तिकरण दिवस मनाने की बात कर रहे थे। इस साल 17 सितंबर को मना ही लेते।
आज का दिन इस विधेयक के पारित होने के बाद ये आने वाले दिनों में किसान इसको किसान सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाएगा और हमेशा याद करेगा इस बात के लिए।
जगदम्बिका पाल किसान सशक्तिकरण दिवस मनाना चाहते थे, लेकिन हो गया उल्टा। इस कानून ने किसानों को विरोध के लिए इस तरह से सशक्त कर दिया कि वे एक साल से अधिक समय तक दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे। कानून को ही भागना पड़ा। क्या भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल आज के दिन को कृषक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाना चाहेंगे? आखिर सरकार ने चर्चा से इनकार क्यों की? अगर चर्चा होती तो देश को, किसानों को पता चलता कि सरकार आगे क्या सोच रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उसकी क्या सोच है।
ऐसा एक साल तीन महीने से एजिटेशन चल रहा था, फिर भी सरकार नहीं मानी। आखिरी में ऐसा एक वक्त आया कि जब सारे देश में एक माहौल बन गया इस कानून के खिलाफ और उसका रिजल्ट थोड़ा सा बाय इलेक्शन में भी उधर उधर महसूस हुआ। और
प्लीज वाइंड अप,
एक मिनट, दो मिनट। तो उसके बाद में पांच स्टेट में चुनाव है, इसका परिणाम भी वो पहले से सोच चुके कि भाई ये बाय इलेक्शन में ऐसा परिणाम है तो फिर पांच स्टेट में इसका परिणाम क्या होगा। तब उनको आया नहीं आपको सर 700 लोग बॉर्डर पे मर चुके हैं।
प्लीज दो मिनट, मैंने समय दिया था। प्लीज
बेशक सरकार ने बहस नहीं की, लेकिन कानून वापसी के प्रस्ताव में अपनी तमाम दावेदारियां कर दी। कम से कम उन्हीं दावों पर बहस होनी चाहिए थी। जिनमें सरकार ने कहा कि 2014 से कृषि विभाग का बजट 5 गुना बढ़ा दिया गया है। 11 करोड़ किसानों को 1,06,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 2016 में फसल बीमा लागू हुई और तब से 8,83,00,000 दावों का निस्तारण हुआ है। सरकार ने अपनी बात तो रख दी, लेकिन फसल बीमा पर विपक्ष की भी बात सुन लेती। संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट के हवाले से ही सुन सकती थी कि इस योजना को लेकर राज्य सरकारें अब किस तरह से सोचने लगी हैं। सरकार बताती, मौका मिलता कि फसल बीमा इतना ही सफल है तो यह बिहार और गुजरात की सरकार इससे अलग क्यों है। मॉनसून सत्र में 10 अगस्त को संसद की स्थायी समिति की एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया है कि बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और झारखंड ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से खुद को अलग कर लिया है, अपनी योजनाएं लॉन्च कर दी। बीमा कंपनियां किसानों को मुआवजा बहुत कम दे रही हैं, काफी देरी से देती हैं। बीमा कंपनियां कैसा काम करती हैं उसकी ऑडिट का भी प्रावधान है, लेकिन संसद की समिति ने कहा है कि ऐसी कोई ऑडिट नहीं हुई है। इस योजना की हालत यह है कि जब संसद की समिति ने पूछा कि विवादों के निपटारे के लिए जो समिति बनी है उसके क्या रिकॉर्ड हैं, तो जवाब मिला कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। कभी फसल बीमा योजना पर बहस होनी ही चाहिए तो पता चलता कि क्यों गुजरात सरकार ने 11 अगस्त 2020 को 1 साल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्थगित कर मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की। अब तो उसके भी 1 साल से अधिक हो गए, लेकिन सरकार ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव में प्रधानमंत्री फसल बीमा को एक बड़ी कामयाबी के रूप में पेश कर दिया। यही नहीं, इस प्रस्ताव में दावा किया गया है कि गेहूं और धान के अलावा कपास और दलहन को न्यूनतम बिक्री दर के दायरे में लाया गया है। आज पेश हुए बिल की प्रस्तावना में न्यूनतम समर्थन मूल्य का इस्तेमाल नहीं हुआ है, न्यूनतम बिक्री दर का इस्तेमाल हुआ है। सरकार ने लिखा है कि लागत से 1.5 गुना अधिक न्यूनतम बिक्री दर दी गई है। बहस होती तो पूछा जाता कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आगे क्या सोचती है। सदन में उसकी राय सामने आती और इस दावे पर सांसद पूछ पाते कि लागत से 1.5 गुना अधिक कैसे दिया जा रहा है।
ये कई सालों से हम देख रहे हैं कि एक ये कोशिश हो रही है कि एक लोगों को ये बताया जा सके कि जो सरकार एमएसपी के माध्यम से जो प्राइसेस अनाउंस करती है वो जो है, जो स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि भाई जो कॉस्ट है उसके ऊपर 50% प्रॉफिट दिया जाए, एक तरह का ये इंफ्लेशन दिया जा रहा है। लेकिन बड़ा एक विचित्र डेवलपमेंट है ये, क्योंकि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि भाई ये कॉस्ट प्लस 50% है जो कि स्वामीनाथन फॉर्मूले के अनुकूल है। दूसरी तरफ जब लॉज रिपील किए गए थे, डॉक्टर स्वामीनाथन ने खुद ही एक ट्वीट में कहा था कि वो उन्होंने अपनी खुशी उसमें जाहिर करके कहा था कि अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि C2+50% के हिसाब से हम एमएसपी देंगे किसानों को, जो कि स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन थी। ये सब हम जानते हैं। C2+50 वो है कि कॉम्प्रीहेंसिव कॉस्ट जो है किसान की, उसके ऊपर 50% प्रॉफिट की बात है। जो सरकार क्लेम करती है कि हम किसान को दे रहे हैं वो तकरीबन वो है A2+FL। A2+ मतलब A2 तो है जो बेसिक कॉस्ट, यानी कि जो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस किए हैं किसान ने प्लस उसकी फैमिली लेबर को जोड़कर, उसके ऊपर सरकार क्लेम करती है कि वो 50% दे रही है। तो ये जो जानबूझकर किया गया है या हम सोचते हैं कि यही एक रास्ता है, मुझे लगता है कि उसमें एक क्लैरिटी हमें आनी चाहिए सबको कि जो सरकार क्लेम कर रही है वो सिर्फ जो कॉस्ट का प्रोडक्शन है उसके ऊपर 50% की बात कर रही है, जबकि स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था कि कॉम्प्रीहेंसिव कॉस्ट के ऊपर 50%। इसका क्या असर पड़ता है कि देखें, जैसे अभी गेहूं का दाम अनाउंस किया गया है तो उसमें भी रफली, मैं एग्जैक्ट फिगर मेरे पास अभी नहीं है, रफली अगर C2+50% से अगर वो प्राइस डिटर्मिन किया जाता तो तकरीबन 600 रुपए के आसपास क्विंटल में उसकी बढ़ोतरी होनी थी या उससे अधिक भी हो सकती है, तो वो एक बढ़ोतरी होनी थी। इस तरीके से बाकी फसलों पे आप करेंगे तो किसान जो है वो एक तरीके का उनको लॉस होता है जब A2+FL के फॉर्मूले के हिसाब से उनके ऊपर प्राइस तय किए जाते हैं।
क्या सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देगी या इसकी मांग को भी कुछ किसानों की मांग बता देगी? ऐसा नहीं कह सकती सरकार, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कुछ किसानों की मांग नहीं है। सरकार की ही रिपोर्ट और उसके डॉक्यूमेंट कहते हैं कि सभी किसानों की मांग है। 2015 में बीजेपी के सांसद छेदी पासवान ने एक सवाल किया कि क्या सरकार ने धान की खरीद को लेकर कोई अध्ययन किया है। तब सरकार जवाब देती है कि नीति आयोग ने 2007-08 से 2010-11 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर एक अध्ययन किया है। इसके अनुसार 81% किसान विभिन्न राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जागरूक हैं। 94% किसान चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहे। इसका मतलब है कि सरकार किसान आंदोलन में शामिल जिन किसानों को कुछ बता रही है, वही कुछ किसान बहुसंख्यक किसानों की मांग का, सबसे बड़ी मांग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2015 के बाद 21 मार्च 2017 को सदन में दिया गया एक और जवाब है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने अपने जवाब में कहा है कि नीति आयोग के एक अध्ययन से पता चलता है कि बहुसंख्यक किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के पक्ष में हैं, क्योंकि इससे उन्हें आय की गारंटी मिलती है। इसी जवाब में यह बात भी लिखी गई है कि जब सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है तब 78% किसान, जिसमें छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं, खेती के विकसित तरीके अपनाते हैं। मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसान प्रोत्साहित होते हैं, खेती में निवेश करते हैं, खेती को फायदा पहुंचता है। संयुक्त किसान मोर्चा की 1 दिसंबर को बैठक होगी, पता चलेगा तब कि किसान आंदोलन का अगला कदम क्या होगा।
आगे MSP है, फसलों के वाजिब दाम है, 10 साल पुराने ट्रैक्टर है, सीड बिल है, ये सारे सवाल है। और आगे
तो आगे होगा किस तरह से,
ये जब भारत सरकार बैठेगी कहीं मिलेगी तो होगा शुरुआत।
मतलब दिक्कत कहाँ पर आ रही है, क्योंकि
वो मिल नहीं रही सरकार।
मतलब सरकार ने आपको अप्रोच ही नहीं किया बातचीत के लिए?
ना, अभी नहीं करा।
तो फिर तो मसला सुलझेगा ही नहीं अगर
ना, अभी तो नहीं सुलझा, ऐसे किस कहा सुलझ रहा मसला।
सरकार ये कह रही है कि मुख्य मांग आपकी थी कि 3 कानून वापसी ले लो, वो ले ले रहे
हैं। सरकार ने किसे कहा?
नहीं नहीं, वो मीडिया में कहा है औपचारिक रूप से नरेंद्र सिंह तोमर।
भाई मीडिया वालों को कहा तो मीडिया वाले ले लो वापसी, हमें तो कहा नहीं।
दूसरा वो कह रहे हैं कि पराली वाला, आपकी डिमांड थी कि पराली जलाने को भी,
कोई पिचोलवा की जरूरत है सरकार को? सरकार आने का टेबल पर बैठ के बातचीत करे, टेबल पर बैठ के मुकदमे कौन लेगा?
जो आंदोलन के दौरान,
आंदोलन के दौरान के मुकदमे जो और मुद्दे हैं, हाँ। उस पर कौन बात करेगा? कल फिर सरकार से बात करनी है सीड बिल पे, हाँ। उसकी एक कमेटी बनाने की सरकार ने बात करी थी।
अच्छा,
वो कमेटी सरकार बनाए के और मसलों पे सरकार बैठ के बातचीत करेगी, MSP से अलग।
सरकार चर्चा करती और इन मुद्दों पर ठोस जवाब देती तो किसानों के बीच ज्यादा भरोसा बढ़ता, उनका हौसला भी बढ़ता। संसद में दिए गए बयान की अहमियत जवाबदेही ट्विटर और प्रेस में दिए गए बयान से ज्यादा होती है। विपक्ष का कहना है कि सरकार चुनावों के कारण इन कानूनों को वापस ले रही है, लेकिन क्या ऐसा है? चुनावों के कारण कानूनों को वापस लिया गया होता तो 19 नवंबर को प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद इन 11 दिनों के दौरान सरकार इन किसानों को अपने पक्ष में लेने का प्रयास करती। अगर सरकार मजबूर होती तो मुलाकात कर रही होती, इन मुलाकातों के जरिए किसानों को संदेश देने का प्रयास करती। चुनाव में तो सब एक दूसरे के आगे हाथ जोड़ते हैं, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि ये जता दिया कि आप हमारे हैं कौन। किसानों की मांगे तो मान ली गई, लेकिन किसानों को गले नहीं लगाया गया, सरकार उनसे दूरी बनाए रखी। आप याद कीजिए, जब इन कानूनों का विरोध शुरू हुआ तब आए दिन कानूनों के समर्थक बुलाए जाते थे सरकारी, और सरकार उनसे मुलाकात कर उनकी फोटो ट्वीट करती थी। क्या यह सरकार इसलिए दूरी बरत रही है ताकि जब भी ये कानून दोबारा वापस आए तो इस वक्त के मुलाकात की तस्वीर मुसीबत ना बन जाए? अगर ये कानून यूपी चुनाव के कारण वापस हुए हैं तब भी कहां सरकार राकेश टिकैत को गले लगा रही है या दूसरे किसानों को गले लगा रही है? क्या यह दूरी आपको असहज नहीं करती है?
सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया और सरकार डरती है। डिस्कशन जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके बारे में है, वो जो 700 किसान जिन्होंने अपनी जान दी उनके बारे में डिस्कशन होना था। डिस्कशन ये भी होना था कि ये जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए इसके पीछे किसकी शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी, ये क्यों किए जा रहे थे, क्यों बनाए गए? डिस्कशन एमएसपी पे भी होना था और जो किसानों की समस्या है उस पे होना था। लखीमपुर खेरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उन पर डिस्कशन होना था, वो तो सरकार ने होने नहीं दिया।
सरकार ये बताए कि जिस समय किसान मांग कर रहे थे ये कानून वापस हो, उस समय भारतीय जनता पार्टी का आर्गुमेंट था कि किसानों के हक में ये कानून बने, और आज जब तीनों कानून वापस ले लिए फिर कह रहे हैं कि किसानों के हक में फैसला लिया है। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी बताए कि इन तीन कानूनों को जो वापस लिया है वो क्या उनके हक में लिया है, और पहले लागू किए थे क्या हक में लागू किए थे?
उन्होंने कह रहे कि बड़ा दिल दिखाए हैं वो।
सवाल बड़े दिल का नहीं है, सवाल ये है कि किसानों की आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी, क्या इन कानूनों से जमीन छीनने की साजिश तो नहीं थी, क्या जमीन नहीं छीनी जाती किसानों की? और फिर आज उत्तर प्रदेश में आप पता कर लीजिए कहीं भी धान की कीमत मिली हो किसान को, गन्ने का अभी भी बकाया है, खाद मिल नहीं रही है, डीए भी मिल नहीं रही है, लोग लाइनों में लगे, रात भर किसान लाइन में लगा हुआ है, खाद कहाँ है, और लोगों किसानों की जान चली गई।
कहा ये भी जा रहा है कि चुनाव की वजह से फैसला लिया गया, फायदा मिले क्या?
भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव बड़ी चीज है, वोट बड़ी चीज है, और वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी फैसला ले सकती है।
किसानों के वोट से इन कानूनों की वापसी को जोड़ने से पहले ध्यान से देखिए, वापसी की कोई भी रस्म इन किसानों के साथ नहीं निभाई जा रही है। इन्हें कुछ बोलकर इनकी संख्या को नकारा जा रहा है। अगर सरकार इनकी संख्या और वोट की चिंता में यह फैसला करती तो कुछ किसान ना कहती। जाहिर है सरकार मजबूत दिखना चाहती है, इसलिए आज के दिन राज्यसभा से एक और खबर आई, विपक्ष के 12 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उनमें 6 सांसद कांग्रेस के हैं, 2-2 सांसद तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना के हैं, और 1-1 सीपीआई सीपीएम के सांसद हैं।
I will be speaking to the chairman, but that this is extremely unfair, this is extremely undemocratic, this is a way to silence the opposition voices, this is trying to take our voices away on important bills that are going to be coming up for discussion, and this suspension does not hold good under any legal purview as per my understanding, and I'm going to take this up.
11 अगस्त के दिन की घटना के संदर्भ में विपक्ष के 12 सांसदों को निलंबित किया गया है। उस घटना के बाद हमने प्राइम टाइम किया था, उसका कुछ अंश बताना चाहते हैं ताकि याद आ सके कि क्या क्या आरोप लगे थे सरकार और विपक्ष की तरफ से। उस दिन जनरल इंश्योरेंस बिल पास किया जा रहा था, विपक्ष इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार ने मांग नहीं मानी और कानून पास कर दिया। उस दिन विपक्ष और सरकार दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है।
कल हमने अपनी आंखों से मार्शल लॉ जैसी परिस्थितियां संसद के अंदर देखी। इंश्योरेंस बिल पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, मार्शल लॉ ने पास किया है।
सभापति वेंकैया नायडू से मुलाकात कर विपक्ष की महिला सांसदों ने आरोप लगाए थे उस वक्त कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई। विपक्ष के नेताओं ने मार्च भी किया, सरकार ने इसी तरह के आरोप विपक्ष के सांसदों पर लगाए। एनसीपी नेता और वरिष्ठ सांसद शरद पवार ने इस घटना के बारे में कहा कि 55 साल के संसदीय जीवन में महिला सांसदों के साथ धक्का मुक्की कभी नहीं देखी, 40 से अधिक महिलाओं और पुरुषों को बाहर से सदन में लाया गया, ये पीड़ादायक है, लोकतंत्र पर हमला है। सांसद छाया वर्मा, फूलो देवी नेताम, प्रियंका चतुर्वेदी ने महिला सांसदों के साथ धक्का मुक्की के आरोप लगाए थे, लेकिन इन तीनों को ही पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। ये उनके पुराने बयान हैं।
महिलाओं के साथ पुरुष मार्शल लोग धक्का मुक्की किए थे, देखिए हमारी छत्तीसगढ़ की सांसद इसके हाथ में मोच आया है।
क्या नाम है आपका? क्या नाम है?
फूलो देवी नेताम।
क्या हुआ था आपके साथ, दिखाइए आपको।
ये मेरे साथ मार्शल धक्का धूमी करे जिसके तहर गिरी और दोनों हाथ को पकड़े और मेरे को धक्का दिए जिसके कारण चोट आई है जगह जगह पे।
उस दिन प्राइवेट समाचार एजेंसी ANI ने राज्यसभा के भीतर का एक वीडियो ट्वीट कर दिया। उसका वीडियो कई चैनलों पर चला, लोग पूछने लगे आप इन्हें कैसे मिल गया, फिर बाद में इसे हटाने के आदेश दे दिए गए। सवाल उठा कि इस एजेंसी के पास राज्यसभा के फुटेज कैसे आए, उस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। हिंदू अखबार की दामिनी नाथ और शोभना के नायर ने अपनी रिपोर्ट में इस घटना को लेकर उसके बाद लिखा था कि जिस वक्त को लेकर आरोप लग रहे हैं उस वक्त जनरल इंश्योरेंस बिल में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया। इस बिल से सरकार को अनुमति मिलती है कि सरकारी बीमा कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम कर दे और प्राइवेट सेक्टर का शेयर बढ़ जाएगा। विपक्ष मांग कर रहा था कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजें ताकि वहां इस पर विचार विमर्श हो सके। जब सरकार बिल लाने पर अड़ गई तब सीपीएम सांसद बिनॉय विश्व स्पीकर के आसन के नीचे रखी मेज पर चढ़ने लगे। आसन पर मौजूद बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने सदन स्थगित कर दी। चंद मिनटों में 10 महिला मार्शल 50 पुरुष आ गए और उन्होंने मानव श्रृंखला बना ली, रिपोर्टर टेबल को घेर लिया, विपक्ष के सांसदों को वेल में आने से रोका। विपक्ष का आरोप था कि सदन के भीतर बाहर से लोग वर्दी में लाए गए महिला सांसदों के साथ धक्का मुक्की के लिए। विपक्ष के नेताओं ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को एक ज्ञापन दिया था उस वक्त और मामले की जांच की मांग भी की थी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल और नकवी ने भी राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू से मुलाकात की थी, अपना पक्ष रखा था, विपक्ष पर आरोप लगाए थे। उस दिन सरकार ने 7 मंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतारा था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, भूपेंद्र यादव, अनुराग सिंह ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, मुख्तार अब्बास नकवी और वी मुरलीधरन प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। विपक्ष पर भी मारपीट के आरोप लगाए गए थे।
मार्शल या सिक्योरिटी स्टाफ किसी पक्ष के नहीं होते, ना वो विपक्ष के है ना सत्तारूढ़ पक्ष के है, वो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का काम करते हैं। और हमने तो किसको अपॉइंट नहीं किया, ये मेरे ख्याल से इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप झूठे हैं और पूरे झूठ के आधार पे ये मैंने जैसे कहा ये डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, इश्यू से डिविएट कर रहे हैं।
कांग्रेस ने 12 विपक्षी सांसदों को निलंबित करने के फैसले का विरोध किया है, कहा है कि निलंबित किए गए सांसदों के साथ अन्याय हुआ है।
कल पूरा विपक्ष सरकार से मांग करेगा इस फैसले को पुनर्विचार हो, और क्योंकि ये तर्क संगत भी नहीं है, न्याय संगत नहीं है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो संभवतः पूरा विपक्ष पूरे सत्र का बहिष्कार करे।
तो मैं कोई इस तरह का हुलिगनिज्म में शामिल नहीं था, मैं वेल तक जरूर गया, कोई निकाल के देख सकता है, और ये मेरा कभी करेक्टर नहीं रहा इतना दिन के संसदीय जीवन में, मैं कभी इस तरह का व्यवहार किया नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने नाम दिया था, ठीक है, संसद से बाहर कर सकते हैं, सड़क पर किसानों की लड़ाई लड़ेंगे।
मॉनसून सत्र में पेगासस जासूसी कांड पर चर्चा नहीं हुई, सरकार ने जांच से इनकार कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस कांड की जांच के लिए कमेटी बना दी, सरकार ने स्वीकार कर लिया। मॉनसून सत्र में कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन शीतकालीन सत्र में बिना चर्चा के कानून वापस हो गए। सदन के बाहर सदन के भीतर कमजोर दिखती सरकार ने अपना कदम बढ़ा दिया है, किसानों से बात नहीं की और राज्यसभा के सांसद निलंबित हैं। अंदाजा लगा सकते हैं लड़ाई का मैदान कहां नजर आ रहा है। आप ब्रेक ले लीजिए। July 7, 2020 को बेंगलुरु के ESI अस्पताल में कोविड से 2 लोगों की मौत होती है। दोनों के परिजनों को सूचना दी जाती है कि अंतिम संस्कार कर दिया गया है। अब पता चला है कि दोनों के शव अस्पताल के शव गृह में ही पड़े पड़े गल रहे थे।
कोविड के 2 मरीजों के शवों के साथ लापरवाही का एक संगीन मामला, परिवार वाले परेशान हैं। उन शवों का अंतिम संस्कार उन्हें करना है जिनके अंतिम संस्कार की पुष्टि महानगर पालिका ने तकरीबन 1.25 साल पहले ही कर दी थी।
उनकी मौत कोविड-19 से हुई थी, इसलिए हमें उनका पार्थिव शरीर नहीं दिया गया, हम घर वापस आ गए। BBMP ने हमें बताया कि अंतिम संस्कार उनका कर दिया गया है। 15 महीनों बाद अब BBMP की तरफ से कॉल आया था और बताया गया कि उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ।
पिछले साल जुलाई में कोविड से मौत के बाद दुर्गा और मुनि राजू का पार्थिव शरीर ESI अस्पताल के शवगृह में रखे रहे। साफ सफाई के दौरान पिछले हफ्ते इनका पता चला, हड़कंप मचा तो ESI ने जांच के आदेश दिए, लेकिन परिवार वालों को अब भी यकीन नहीं हो रहा।
इन्होंने कहा है कि आगे का सारा काम ये ही लोग देख लेंगे। अब जब तक ये खत्म नहीं होता हम यही रहेंगे। हमारे लिए शव को ले जाने के लिए कुछ नहीं बचा है, ऐसा कह रहे हैं। हमारे दूसरे रिश्तेदार भी यहाँ आ रहे हैं। इन लोगों की लापरवाही से हम बहुत दुखी हैं। हमें न्याय चाहिए।
शव गल चुके हैं, इनका पोस्टमार्टम करना भी किसी चुनौती से कम नहीं। सीधे तौर पर यह महानगर पालिका और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।